मुहर्रम के हवाले से इब्तदाई तौर पर मुकदमतन जो है वो कुछ बातें अर्ज कर दूँ आपके सामने। मालिकी जहन्नी से एक रवायत है जो कि उन्होंने इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से हदीस नकल की है। इमाम फरमाते हैं, जो कोई आशूर के दिन किनारे कब्र हुसैन मौजूद हो और इन पर गिरिया करे तो अल्लाह की तरफ से मैं जमानत लेता हूँ कि उसको 1000 हज 1000 हज 1000 उम्रा और वो भी रिसालत माप के साथ और 1000 जहाद करना रसूल के साथ का सवाब अता करेगा। यानी इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम जो कोई आशूर के दिन इमाम हुसैन की कब्र के किनारे के यानी साथ में हो और वहाँ पर मौजूद होने के बाद वो गिरिया करे तो कितना सवाब करे, मैं ज़मानत लेता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से ज़मानत ले रहे हैं कि उसको 1000 हज 1000 उम्रा और 1000 जिहाद रसूल के साथ करने का सवाब अता होगा। सहाबी ने सवाल किया, यबना रसूलुल्लाह, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, यबना रसूलुल्लाह मैं आप पर कुर्बान जाऊं कि वो लोग जो दूर रहते हैं करबला नहीं आ सकते उनके लिए क्या है? तो मौला ने जवाब दिया कि वो या बियाबान में चले जाएं या अपने घरों की छतों पर चले जाएं और वहीं से दूर से करबला की तरफ इशारा करते हुए सलाम करें हुसैन पर और दुश्मनान और कातिलीन पर लानत भेजें और अपने घर में देखें। ये अहम है कि चूंकि हमारे यहाँ एक तरीका राइज है कि हम अपने घरों पे मजालिस बर्पा करते हैं तो अमूमन लोगों के जहन में सवाल आता है कि घर पे मजलिस करने का क्या क्या ज़रूरत है, हम इमाम बारगाह में कर लेते हैं, हम कहीं और कर लेते हैं। नहीं, घर पे मजलिस करने की अहमियत यहाँ बताई जा रही है। क्या कि वो दूर से ही हुसैन पर सलाम करें और दुश्मनान और कातिलीन पर लानत करें और अपने घरों में हमारा मरसिया पढ़ें और हमारा मातम बर्पा करें और सब मिलकर मुसीबत हुसैन पर गिरिया जारी करें तो मैं खुदा की तरफ से उनके लिए जमानत लेता हूँ। यानी जामिन बन रहे हैं इमाम कि मैं खुदा की तरफ से उनके लिए जमानत लेता हूँ कि ये तमाम सवाब उनको मिलेगा। कौन सा सवाब? 1000 हज 1000 उम्रा और 1000 जिहाद का। सहाबी ने फौरन कहा, मौला ये तमाम सवाब फकत इस अमल पर? ताज्जुब के साथ बोला, उसको ताज्जुब पर होता इतना सवाब। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए जहन्नी, न फकत ये सवाब बल्कि तमाम अंबिया व औलिया व मुरसलीन ने जो जो मुसीबतें राह खुदा में उठाई हैं इनके तमाम इन मुसीबतों के उठाने का जो सवाब है वो भी इनको अता होगा। यानी अहमियत बताई जा रही है कि मजालिस का बर्पा करना अपने घरों पे कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। इसका एड्रेस कामिलुज़ ज़ियारत में इब्ने कौलिया ने सफ़ा 174 पर यह रवायत बयान की है। कामिलुज़ ज़ियारत, किताब कामिलुज़ ज़ियारत इब्ने कौलिया सफ़ा 174। इमाम रज़ा की रवायत है, जो कोई भी हमारी मजलिस में बैठेगा, अपनी मजलिस का जिक्र कर रहे हैं, कहा जो कोई भी हमारी मजलिस में बैठेगा जिसमें हमारे अम्र को जिंदा किया जाएगा इसका दिल कभी नहीं मरेगा, जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। यानी कयामत की तरफ इशारा है कि जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे उस दिन इस मोमिन का जो मजलिस करेगा, जो मजलिस में शिरकत करेगा, उसका दिल जिंदा रहेगा। अल्लामा मजलिसी, बिहारुल अनवार, 44वीं जिल्द, 44 जिल्द, सफा नंबर 278। रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार 44 44 जिल्द नंबर सफा नंबर 278। रिसालत माफ फरमाते हैं, रहमत खुदा हूँ हमारी मजलिस और जिक्र बर्पा करने वालों पर। रिसालत माँ फरमाते हैं, रहमत खुदा हो, खुदा की रहमत हो उन अफराद पर कि जो हमारी मजालिस और जिक्र बरपा करते हैं, मजलिस मुनाकिद करने का सवाब, और इसमें शिरकत करने वालों पर जो मजालिस में शिरकत करते हैं। शेख मुफीद, अमालिय शेख मुफीद, सफ़ा नंबर 222। इसी तरह से रिसालत माब ने फरमाया कि जब कभी जन्नत के बाग़ों में से बाग देखो तो इसमें हाजिर हो जाओ, शरीक हो जाओ। पूछा, या रसूलल्लाह ये जन्नत के बाग कौन से हैं जो दुनिया में हैं? कहा, हमारी मजालिस जिसमें हमारा जिक्र हो। अल्लामा फहद हिल्ली, इब्न फहद हिल्ली, किताब इद्दतुद्दाई, सफ़ा नंबर 253, 253। इब्न फहद हिल्ली, इद्दतुद्दाई, किताब का नाम, ऐन दाल ता छोटी, ये जो ता होती है इस तरह से बनती है, तो इद्दतुद्दाई, दाई अलिफ लाम दाल है, अलिफ ऐन ये दाई, इद्दतुद्दाई, इब्न फहद हिल्ली, सफ़ा नंबर 253। इसी तरह से छठे इमाम की रवायत है, नालो गिरिया जारी मकरूह अमल है सिवाय याद खुदा के। यहां मुराद याद खुदा नहीं है, जिक्र खुदा, याद खुदा, गुनाहों पर गिरिया और जारी, इसके अलावा की बात हो रही है। लेकिन हुसैन के लिए गिरिया और जारी, अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार 45वीं जिल्द सफ़ा नंबर 313। अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार, किताब का नाम, जिल्द नंबर 45, सफ़ा नंबर 313। जी, हर नालो गिरिया उजारी मकरूह है मगर हुसैन पर नाला और गिरिया जारी। इसी तरह से इमाम जाफर सादिक सलाम की दूसरी रवायत के फरमाते हैं कि हुसैन की कब्र पर कयामत तक 4000 फरिश्ते अल्लाह ने मुअय्यन किए हैं कि जो उनके ऊपर गिरिया जारी करते हैं। कामिलुज़ ज़ियारात, सफ़ा नंबर 19। आठवें इमाम से रवायत है, अच्छा, अमूमन लोग सवाल करते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ मौत वाक़ हो जाती है तो हम मजालिस से इमाम हुसैन बरपा करते हैं, आज़ादारी करते हैं इमाम हुसैन की। इसी हवाले से ये रवायत बहुत अहमियत की हामिल है कि इस रवायत को हतमन याद करें कि आठवें इमाम से असल में हमारे लिए इमाम मासूम, मासूम का कौल, फेल और तकरीर तीनों चीज़ें हुज्जत हैं। तीनों चीज़ें, फेल जो वो अंजाम देते हैं और कौल जो बयान किया और तकरीर यानी उनके सामने कोई अमल अंजाम दिया गया हो और वो खामोश उस अमल को देखते रहें, इसका मतलब क्या है कि जायज़ ही अमल। इसीलिए इमाम रज़ा की रवायत है कि उन्होंने शबीब से, पिसर शबीब से, ए पिसर शबीब, अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ पर रोना आए तो तुम हुसैन पर गिरिया कर लेना। क्यों? इसलिए कि मेरे जद को भेड़ बकरियों की तरह से ज़बह किया गया। अल्लामा मजलिसी, बिहारुल अनवार, 44वीं जिल्द, सफा नंबर 286। और ये रवायत भी इमाम रज़ा अलैहि सलाम से है। कि इमाम ने फरमाया रोने वाले हुसैन जैसे पर गिरिया करें। रोने वाले हुसैन पर गिरिया करें क्योंकि हुसैन पर गिरिया गुनाहाने कबीरा को ख़त्म करता है। यानी हुसैन पर फ़कत एक आदमी गिरिया कर ले खुद उसके गुनाह की कमी का बाइस बनते हैं। अल्लामा मजलिसी, बिहारुल अनवार, 44वीं जिल्द, सफ़ा नंबर 284। इसी तरह से आठवें ही इमाम से रवायत है कि अगर हुसैन पर किसी ने इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया कि तुम्हारे रुखसारों पर हुसैन के गम में गिरिया करने के आंसू जारी हो जाएं, तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, कम हों या ज़्यादा हों। यानी कितना सवाब है हुसैन के गम में गिरिया करने का। अमालिये शेख सदूक, सफा नंबर 112। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसी कोई आंख, ऐसी कोई आंख नहीं कि हम पर गिरिया करे मगर ये कि हम उसको आबे कौसर से सैराब करेंगे। जामेउल अहादीस, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 554। आगे जेल नंबर 2। इसी तरह से छठे इमाम से दूसरी रवायत, अल्लाह ने हर चीज का सवाब मुअय्यन किया हुआ है, تم نے فلاں نیکی کی اس کا اتنا ثواب، تم نے فلاں کام کیا اس کا اتنا ثواب، تم نے اتنا کام کیا ایسا کام کیا اس کا تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ اسی لحاظ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر نیکی کا ہر ثواب کا کو معین کیا ہوا ہے، مگر وہ آنسو وہ اشک جو ہمارے غم میں بہائے جائیں، یعنی غم حسین میں بہائے جائیں، یعنی اس کا کوئی ثواب معین نہیں ہے، اتنا ثواب ہے۔ یہ حدیث بھی جامع الاحادیث میں موجود ہے، 12ویں جلد میں موجود ہے، صفحہ نمبر 548۔ چھٹے امام سے روایت ہے، جس کسی نے ہمارے راہ میں گریہ کیا، ہمارے لیے گریہ کیا، اس گریہ کی خاطر کیونکہ ہمارا خون بہایا گیا، ہمارا حق چھینا گیا، ہماری عزت اور آبرو سے کھیلا گیا، تو پروردگار اس کو اس گریہ کی خاطر بہشت جاویدہ میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ عمالیہ شیخ مفید، صفحہ نمبر 153۔ آٹھویں امام سے روایت، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے عالی درجے پر فائز ہو تو ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاؤ، غمگین ہو، اور ہماری خوشی میں خوش۔ اب دیکھیں کتنا ثواب ہے، محرم کے ایام آ رہے ہیں، محرم کے ایام میں عزاداروں کے لیے، مومنین کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ کس طرح سے محرم کے ایام میں ثواب لے سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس المحموم لظلمنا تسبیح وهمه لنا عبادۃ وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ۔ کیا فرمایا کہ ہماری مظلومیت پر اگر کوئی غمزدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اس کا ہر سانس تسبیح ہے۔ محرم کے ایام آتے ہیں، غم کے ایام ہیں، ہر شخص غمزدہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب کہ وہ غم فقط اپنے دل میں جو رکھا ہوا ہے حسین کا، اور اس کے ساتھ جو سانسیں لے رہا ہے وہ سانسوں کو اللہ امام جو ہیں وہ تسبیح قرار دے رہے ہیں۔ اور ان دنوں میں جو غم زدہ ہوتا ہے اس کا یہ غم میں رہنا عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک تاکیدی جملہ عطا کیا، کیا فرمایا، اپنے اصحاب کو فرمایا کہ دیکھو اس حدیث کو سونے کے حروف سے لکھ لو اپنے پاس، کوئی معمولی شخص نہیں بیان کر رہا یہ احادیث، یہ احادیث چھٹے امام نے بیان کی ہیں، جو کہ حجت ہیں ہم پر کہ تمہارا فقط غمزدہ ہونا یہ تسبیح، تمہاری سانسیں تسبیح کہلائیں گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے معاشرے میں رائج تھیں کہ جن میں اب کمی آ رہی ہے، اور مسلسل کمی آ رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آزاداری کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ حساس رہنا ہے، بہت زیادہ اہمیت دینا ہے، حتیٰ اس آزاداری کو ہمیں منتقل کرنا ہے اپنے آئندہ کی نسلوں میں، ताकि वो इज्जत और एहतराम कायम रहे, बाकी रहे। हमें अच्छी तरह याद है कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, अब वो ख्वातीन का तरीका था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एज वाली थी हमारी मुख्तलिफ जो रिश्तेदार थे, अब मुहर्रम का महीना शुरू होता था। अब देखें, कम इल्मी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। उस वक्त ज़ाहिर है कि हमारे पास इतना इल्म तो नहीं था। मुहर्रम का चांद देखा और रोना शुरू कर दिया, गिरिया शुरू कर दिया। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, यानी ये वो चीज़ नहीं है कि हमने सुनी हो और वो नकल कर रहे हैं, कहीं पढ़ी हो और आपके सामने नकल कर रहे हैं, नहीं, हमने अपनी आंखों से देखी ये चीज़। यहाँ मुहर्रम शुरू हुआ, गिरिया, चांद देखा और रोना शुरू कि चांद देखे क्यों रोए जा रहा है। अच्छा, चूड़ियाँ हाथों में होती थी, वो उनका एक देखें, अब मैं नहीं कह रहा कि यकीनी तौर पे जो गम हुसैन में उन्होंने खुलूस के साथ अमल अंजाम दिया, उसको परवरदिगार बगैर अजर के नहीं छोड़ेगा। चूड़ियाँ हाथ में, हमने नहीं देखा आज तक उन्होंने चूड़ियाँ उतारी हैं, हमेशा तो होती थी चूड़ियाँ। देखें, बहुत चीज़ों का ताल्लुक जो है वो हम फिक्र और शरीयत से ना जोड़ें। हो सकता है कि फिक और शरीयत के अंदर इसका कोई जिक्र ना हो, लेकिन बिलाखिर एक माशरे का, एक माशरे की रस्म है, इसलिए कि आज़ादारी डिपेंड कर रही होती है आपके अपने उर्फ के ऊपर कि आपके माशरे में किस चीज़ को आज़ादारी कहा जाता है। हर वो चीज़ जो आपके माशरे में आज़ादारी कहा जाता है उस पर आपको अमल करना है। ठीक है, उनके माशरे के अंदर ये था राइज, चूड़ियों को वो लोग तोड़ा करते थे मुहर्रम के पहले चांद रात के दिन, चांद रात में तोड़ा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि चारपाई पे सो रहा हूं, मुहर्रम के अय्याम आए, चारपाई उल्टी कर दी, बिस्तर नीचे आ गया, बिस्तर नीचे आ गया। और बड़े बुजुर्ग जो हमारे थे वो पान खाते थे पूरे 10 दिन, बहुत मुश्किल काम ही है जो पान का आदि हो, पूरे 10 दिन पान तर्क कि नहीं, आशूर तक तो कम से कम पान नहीं खाना। ये देखें, इसका हो सकता है शरीयत से फिक्र से ताल्लुक ना हो, लेकिन ये बेहतरीन, बहुत अच्छी चीज़ें थीं। मैं कहता हूँ खुदा रे इन चीज़ों को दोबारा अपने माशरे में राइज करें। क्यों अहमियत कम हो रही है हमारे माशरे में? अहमियत कम नहीं करना चाहिए हमें इन चीज़ों की, हमें इसको बिल्कुल इस तरह से चला आ रहा था हमारे माशरे में उसी तरह से आज़ादारी को कायम रखना है, उसी तरह से आज़ादारी मनाना है। बहरहाल ये कमी है हमारे माशरे में और हमें कोशिश करना चाहिए कि इस आज़ादारी को उसी तरीके से, और मराजे कराम भी यही ताकीद करते हैं। आप देख लें, आप जब भी आएँ वहाँ पर, इराक़ जाएँ या नजफ जाएँ या करबला जाएँ या कुम आइए, मशहद आइए, जहाँ पर भी मराजे कराम मौजूद हैं उनके घरों पे आज तक उनके घरों पे मजालिस होती हैं, या किसी के यहाँ शब जुमा में या जुमे की सुबह हतमन मजलिस होती है। और उनका तरीक़ेकार वही एक है, चाहे वो हमने आए बहजत हों, आए वहीद हों, आए मकारिम हों, आए जितने भी मराजी हैं, आए शुबेरी जिंजानी हों, सबका तरीका एक, दरवाजे पर खड़े होते हैं। अब ज़ईफ़ी का आलम, इस वक्त आए वहीद की एज तकरीबन 99 के करीब है, आए वहीद की एज। अब उस 99 साल का एक ज़ईफ शख्स, अच्छा माशाल्लाह से हाफिज़ा देखें, आज भी दर्स खारिज देने, दर्स खारिज देना कोई आसान काम नहीं है, रवायात को पढ़ना है, मतालिब को बयान करना है, दूसरों की, दूसरे जो मुश्तहिदीन गुजरे हैं उनकी अनजार का बयान करना है, उनके अनजार को बयान करते हैं, दर्स खारिज देते हैं। और हाफिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि जिस तरह से कहते हैं कि जैसे जैसे एज इंसान की बढ़ती है हाफिज़ा कम होता है, और हमारे मराजे में उल्टा इसका बरक्स असर है कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है हाफिज़ा भी उनका कवी होता रहता है। उसी हाफिज़े के साथ दर्स खारिज आज भी जारी है। अच्छा आप देखें हमारे जितने भी मराजे हैं सारे के सारे 70-80 से ऊपर हैं, 70-80 से नीचे तो है ही नहीं। आई सिस्तानी 86 किस वक्त हैं, आए वही 99 साल के। और इस ज़ईफ़ी के अंदर एहतराम इतना ज़्यादा है मजालिस का कि आज भी सारे के सारे मराजे दरवाजे को बैठे रहते हैं, जैसे ही कोई आया अपनी जगह से खड़े हो गए, बहुत शुक्रिया सबका, एक एक का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत शुक्रिया कि आप मजलिस हुसैन में तशरीफ़ लाए। हर हफ्ते उनका ये तरीका है, यकीनन कोई तो इसमें एक चीज़ है अज़ादारी में कि इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं वो लोग, यानी उनकी मोहब्बत देखिए। आप आगे मरशी नजफ़ी को देखिए, आगे मरशी नजफ़ी आखिरी उम्र तक इस तरह से आज़ादारी करते थे कि आखिर में उन्होंने वसीयत की, मशहूर मारूफ वसीयत है, सबको अंदाज़ा है, सबको मालूम है क्या वसीयत की थी, कि मेरे सियाह लिबास से जो मैंने हर आज़ादारी में पहना मेरे साथ रखना, मेरे रुमाल को, एक रुमाल था, अब मैं बयान करूँगा आगे आदाब के अंदर, एक ख़ास रुमाल था सियाह रंग का, हमेशा उसको आंसू पोंछने के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा बहुत से उलमा को मैंने देखा है, ये इमाम हुसैन की आज़ादारी में गिरिया करना, इसको किस तरह से आपके सामने बयान करूं कि मैंने ये देखा है अपनी आंखों से कि ये उलमाए कराम जिस वक्त आंसू जारी होते हैं, इन आंसुओं को लेकर मसलन अगर किसी के सर दर्द का मसला है, किसी के कहीं दर्द का मसला है, वहां पे इन आंसुओं को मलते हैं। यकीनन अल्लाह ने इन आंसुओं में शिफा रखी है, तभी एक ये चीज। दूसरी कि जिस वक्त वाकई दिल से आपके इमाम हुसैन के गम की खातिर दिल गमगीन हो जाए, वाकई दर्द हो दिल में, जो मुश्किल आपकी है, जो परेशानी है, उस वक्त आप बुलंद करें दिल में, चाहे इस गम के सदक़े में मुश्किल फलां हल हो गए। मवारिद बताए उलमा ने, जिसमें एक मौरिद ये कि जिसमें वाकयन दर्द हो दिल में, उस वक्त दुआ मांगना, वो कबूलियत है। इसी तरह आए मरेशी नजफी ने हमेशा एक रुमाल रखा पूरी जिंदगी में, और उस रुमाल से हमेशा अपने आंसू पोछा करते थे। तो क्या वसीयत की, कहा देखो ये मेरा रुमाल है, मैंने इसमें जो आंसू बहे हैं गम हुसैन में, इन आंसुओं को इस रुमाल में जमा किया है, देखो याद रखना जब मुझे दफनाना तो इस रुमाल को मेरे सीने पर रख देना, बस इन आंसुओं में जो गम हुसैन में बह रहे हैं, यकीनी तौर पे कोई तो तासीर है कि इतनी बड़ी वसीयत की जा रही है। दूसरी वसीयत, तीसरी वसीयत आए मरशी नजफी की, तीसरी वसीयत क्या वसीयत, कहा जब मुझे गुस्ल कफन दे देना उसके बाद मेरे जनाजे को हरमे मासूमा में ले जाना, हरमे मासूमा में ले जाने के बाद मेरे जनाजे को रख देना, और रखने के बाद मेरे अमामे को जो मैं हमेशा अपने सर पर बांधा करता था, इस अमामे को खोलना, और इस अमामे को खोलकर एक सिरा इसका मेरे जनाजे के साथ बांधना और एक सिरे को जरी से बांधना, और जब बांध देना तो इसके बाद किसी शख्स को मुकर्रर करना कि उस वक्त एक मसाइब का जिक्र करें। अच्छा मसाइब, मैं अगर होता तो शायद मैं पूछता आए मरशी से कि मसाइब का आपने कहा है, हम कोई भी मसाइब पढ़ दें, का नहीं सारे मसाइब नहीं, खास मसाइब का जिक्र करना उस वक्त। क्या कहा कि हुसैन की करबला में हुसैन की आखिरी रुखसत का बयान करना, करबला में हुसैन की आखिरी रुखसत के मसाइब पढ़ना, इसीलिए हम देखते हैं जितने भी हमारे मराजे गुजरे, नहीं पता इसमें क्या राज पोशीदा है। वल्ला मुझे मुझे भी नहीं पता ये राज, इसमें क्या राज पोशीदा है। जितने मराजे गुजरे सब ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि देखो हमारे जब जनाजे पे जाना तो हमारे जनाजे को दफन करने से पहले आखिरी रुख्सत हुसैन की पढ़ना। क्यों? इसलिए कि मारूफ है कि आए मरशी नजफी के पास जिस वक्त जाफर जिन आया मुलाकात के लिए, जब वो हयात थे, जाफर जिन उस वक्त हयात थे। जाफर जिन कौन? जाफर जिन जिनों के सरदार के जो करबला में थे मौजूद। करबला में जब जिनों के सरदार आए थे, वो मौला से कहा था कि मौला हमें इजाजत दीजिए कि हम आपके साथ दें, अपनी फौज को बुलाएं, जिन्नात को बुलाने। मौला ने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरा इम्तहान है, इससे मुझे गुजरने दो। वही जाफर जिन जब आए मरशी से मुलाकात हुई तो आए मरशी ने कहा कि क्या तुम मुझे करबला के मनाजिर दिखा सकते हो? अब ये अजीब व गरीब ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं आए मरशी नजफी कि क्या मुझे तुम करबला के मनाजिर दिखा सकते हो? क्या अजीब, मैं बिल्कुल करबला दिखा सकता हूँ। काचा दिखाओ। उसने यूं करके हाथ किया कि देखिए, अब उस पर करबला के मनाजिर चलना शुरू हुए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई स्क्रीन पे मनाजिर वो चला रहा है। आए मरशी नजफी, सारे मनाजिर उन्होंने देखे, सबकी शहादतें देखी जो बयान किया जाता है, सबकी शहादतें देखी। और जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुख्सत का वक्त आया, उसने हाथ खींच लिया, कहा तुमने सबकी शहादतें मुझे दी। यह आए मरशी नजफी कह रहे हैं किससे? जाफर जिन से, कि तुमने सारी शहादतें मुझे दिखा दी लेकिन हुसैन की आखिरी रुख्सत जो मैं देखना चाहता था तुमने फौरन हाथ नीचे कर लिया। कह नहीं, ये नहीं दिखा सकता, मैं आपको मना कर दिया, ये नहीं दिखा सकता। अब क्या वजह है कि नहीं दिखा सकता? मुमकिन है कि ये हो कि ये इंतहाई सख्त है फातिमा जहरा के लिए, कि शायद इसलिए नहीं दिखा सकता मैं। और शायद हो सकता है यही वजह हो कि हमारे जितने भी उलमाए कराम, जितने बुजुर्गान हैं, कि जिनका इंतकाल होता है सब के सब एक ख्वाहिश करते हैं कि हमारे जनाजे पर या हमारी कब्र पर खड़े होकर किसी को मुकर्रर करना कि वो आखिरी रुख्सत इमाम हुसैन पढ़े। अब ये राज वो लोग जाने कि क्या राज है इसमें। इसीलिए यहां पे भी ताकीद यही कि जब जनाजा उठे किसी के मरहूमीन का तो जिक्र हुसैन इंतहाई सवाब, और खास तौर पे अगर दो मिनट के मसाइबे आखिरी रुख्सत इमाम हुसैन की पढ़े, जो राज इसमें पोशीदा है वो उनको इंशाल्लाह अजर व सवाब मिलेगा। बहरहाल आपके वक्त है इन आराम का, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज इसको हम कंप्लीट कर दें। कुछ आदाब हैं, कुछ इस्तेहबाब हैं, कुछ आमाल हैं मुहर्रम के, वो कोशिश करेंगे कि आज हतमन आपके सामने बयान कर दिए जाएं। एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जी। रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत है कि जब हजरत रिसालत माप ने हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को खबर दी कि इमाम हुसैन के साथ, मेरे हुसैन के साथ क्या वाकया होगा करबला में, तो उन्होंने कहा कि कौन होगा कि जो उस वक्त गिरिया करेगा, आप होंगे। इस तरह की पूरी रवायत, उसके बाद आखिर में कहा नहीं, मैं कौम को अल्लाह ताला खल्क करेगा कि जो हुसैन पर गिरिया करेगी। उसके बाद कहा कि इनका अजर क्या होगा बाबा? असल ये हमारी रवायत जो सुनाने जा रहा हूँ, पहले वो वाकया है पूरा, वो एक रवायत की शक्ल मौजूद है, वो आप लोगों ने सब ने सुना हुआ है, और इसको मैंने पिछले दर्स में बयान कर चुका हूँ इस चीज़ को, उसके आगे की चीज़ में बयान कर रहा हूँ। कि अब यहाँ पे सवाल किया हज़रत ज़हरा ने कि इनका आजिर सवाब क्या होगा कि जो मेरे हुसैन पर गिरिया करेंगे। तो फिर रसालत माब ने फरमाया, फातिमा कयामत के दिन हर आंख गिरिया होगी, यानी हर आंख रो रही होगी, मगर वो आंखें कि जिसने हुसैन के गम में आंसू बहाए, यानी हर आंख गिरिया करेगी कयामत के दिन, मगर वो आंखें जिसने हुसैन के गम में गिरिया किया, ये आंख कयामत के दिन खंदा होगी, यानी मुस्कुरा रही होगी, और इसी को जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाएगी। अल्लामा मजलिसी, बिहारुल अनवार, 44वीं जिल्द, सफ़ा नंबर 293। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से रवायत है कि हर चौथे इमाम से रवायत है कि हर मोमिन जिक्र शहादत हुसैन पर कि जिसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए, खुदावंद जन्नत में इसके लिए आली मुकाम करार देगा। युनाबियुल मुवद्दा, सफा नंबर 429। इसी तरह से छोड़ते हैं मन की एक और हदीस कि जिसकी आंखों में हमारी मुसीबत पर आंसू जारी हुए, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करेगा। एहकाकुल हक, काजी नूरुल्लाह शुस्तरी, जिल्द नंबर 5, सफा नंबर 523। जिसकी आंखों से हमारी मुसीबत पर आंसू जारी हुए, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा। तहकाकुल हक, जिल नंबर 5, सफा 523। इसी तरह से खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, क्या खुद हुसैन फरमा रहे हैं किसके लिए? अपने लिए। अना कतील अबरा ला यस्कुरुनी मुमिनन इल्ला बका, मैं कुश्ते अश्क हूं, यानी आंसुओं का कत्ल होने वाला, मैं कुश्ते अश्क अश्क हूं, कोई मोमिन मुझे याद नहीं करता मगर ये कि मेरी मुसीबतों पर आंसू बहाए। कुश्ते, कुश्ता यानी ज़बह करने वाला, होने वाला कुश्ता यानी कत्ल होने वाला जी। मैं कुश्ते अश्क हूँ, कोई मोमिन मुझे याद नहीं करता मगर मेरी मुसीबतों पर आंसू बहाए। छठे इमाम की रवायत, इमाम फरमाते हैं जिस किसी के दरमियान हमारा जिक्र हो, यानी हमारी मजलूमियत का जिक्र, और उसकी आंखें नम हो जाएं, परवरदगार इसके चेहरे को आतिशे दोजख के लिए हराम करार दे देता है। जिस किसी के दरमियान हमारा जिक्र हो और इसकी आंखें नम हो जाएं, तो परवरदिगार इसके चेहरे को आतिशे दोजख पर हराम करार देता है। अल्लामा मजलिसी, बिहारुल अनवार, 44वीं जिल्द, सफा नंबर 285। जी, पांचवें इमाम की रवायत है, इमाम के सामने शायर अहले बैत कमीत या कुमैत, अब तलफ्फुज़ क्या है इसका, ये मैं नहीं देख सका। काफ मीम ये थे ने मरसिया पढ़ा। इसके मरसिया पढ़ने पर इमाम ने खूब गिरिया किया। इमाम ने खूब गिरिया किया और उसके बाद अपने सर को बलंग किया, यानी सर को उठाया और फरमाया, कोई ऐसा मोमिन नहीं जो हमारी याद मनाए या इसके सामने हमारा जिक्र हो। मगर ये कि इसकी आंखों में हमारी मजलूमियत पर आंसू आ जाए। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत में महल देगा और इस पर आतिशे जहन्नुम को हराम करार देगा। अल गदीर अल्लामा अमीन, और इस पर आतिशे जहन्नुम को हराम करार देगा, यानी उसके लिए आतिशे जहन्नुम हराम होगी। अल्लामा अमीनी किताबे अल गदीर जिल्द नंबर 2 सफा 202, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 202। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अज़ादारों के लिए खास तौर पे एक दुआ फरमा रहे हैं। क्या दुआ फरमा रहे हैं? इमाम के सामने एक आज़ादार आया, इमाम ने उसको देखा और फरमाया, अल्लाह तुम्हारे अशकों पर रहमत नाजिल फरमा, आगाह रहो याद रखो कि तुम्हारा शुमार हमारे हमदर्दों और गम गुसारों में से है, और हर वो शख्स जो हमारी खुशी में खुश और हमारे गमों में गमजदा होता है, याद रखो तुम उनमें से एक हो कि जिसकी मौत के वक्त हमारे अजदाद इसके सरहाने आएंगे। पर इसका मतलब, छठे इमाम के सामने एक आज़ादार आया, उस आज़ादार को देखकर इमाम जावेद सलाम ने उसको दुआ दी। किस तरह से? अल्लाह तुम्हारे अशकों पर रहमत फरमा। तुम्हारे आंसुओं पर रहमत नाजिल फरमा, आगाह रहो याद रखो कि तुम्हारा शुमार हमारे हमदर्दों और गम गुसारों में से है, जो हमारी खुशी में खुश और हमारे गमों में गमजदा होते हैं, याद रखो कि तुम उन्हीं में से हो कि जिसकी मौत के वक्त हमारे आबाओ अजदाद इसके सरहाने आते हैं, यानी जो हुसैन के गम में अज़ादारी मनाता है, मजालिस बर्पा करता है, उनमें शिरकत करता है, उनके ऊपर आंसू बहाता है, उनका मातम व गरिया जारी करता है, उसके सरहाने मौत के वक्त क्या होगा? आइम्मा तशरीफ लाएंगे। बस जो चीज चाहता है कि उसकी मौत के वक्त मौत में आसानी पैदा हो, उसके किनारे पे आइम्मा तशरीफ लाएं, उसको ये सारे काम अंजाम देना चाहिए। शेख हुर्र आमली वसाइल उशिया जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 397। शेख हुर्र आमली वसाइल उशिया जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 397। अब आज़ादारों के लिए खुद हज़रत फातिमा क्या फरमा रही हैं? حضرت زہرہ فرما رہی ہیں جب تمام وہ لوگ، اب غور سے سنیے گا کیا عظمت ہے عزادار کی، کہ تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے حسین پر گریہ کیا ہو، تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے حسین پر گریہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میں جنت میں داخل ہوں گی. کتاب البکا صفحہ نمبر 86، کتاب البکا، بکا یعنی گریہ. کتاب البکا صفحہ نمبر 86، اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خدا حسین پر گریہ وزاری کرنے والوں پر سے عذاب کرنے میں حیا محسوس کرے گا. قیامت کے دن پروردگار عزاداروں پر عذاب کرنے میں حیا محسوس کرے گا. یہ بھی کتاب البکا صفحہ نمبر 94. چھٹے امام کی روایت، میرے جد حسین ہمیشہ اپنے زوار اور ان کے اوپر گریہ کرنے والوں اور مجلس عذاب برپا کرنے والوں پر نظر رحمت رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت نظر رحمت رکھتے ہیں. چھٹے امام سے روایت، میرے جد حسین ہمیشہ اپنے زواروں اور ان کے اوپر گریہ کرنے والوں پر اور مجلس سے عذاب برپا کرنے والوں پر نظر رحمت رکھتے ہیں. کتاب اکثیر العبادات اسی کتاب میں ایک اور روایت چھٹے امام سے کہ ہمارے جد حسین اپنے رونے والوں پر نگاہ رحمت رکھتے ہیں اور ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اپنے والدین اور بھائی سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں. کتاب اکثیر العبادات چھٹے امام سے روایت ہے، ہمارے جد حسین اپنے رونے والوں پر نگاہ رحمت رکھتے ہیں اور ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ انسان اگر حسین کے غم میں غم زدہ ہو اور ان پر گریہ کرے تو حسین اس کی مغفرت کو طلب کرتے ہیں، اور فقط وہ خود نہیں طلب کرتے بلکہ اپنے والدین اور اپنے بھائی سے، یعنی امام حسن سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو جس نے مجھ پر گریہ کیا ہے اس کے لیے طلب مغفرت کرو. اور چھٹے امام کی ہی روایت کہ خدا جس کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کی محبت ایک نعمت ہوئی کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، بس اس نعمت کو باقی رکھنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے. خدا جس کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جس کی خیر خواہی نہیں چاہتا اس کے دل میں حسین کا بغض ڈال دیتا ہے. شیخ العاملی وسائل الشیا جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 388. اسی طرح سے یہی حدیث بہار الانوار میں علامہ مجلسی بہار الانوار اور کی 98 جلد صفحہ نمبر 76. چھٹے امام کی روایت، گریہ کرنے والا اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا کیا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بالکل اس طرح سے کہ جیسے ابھی اپنی شکم مادر سے آنے والا بچہ. کتاب الاکثیر. اچھا چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ورنہ اس میں کچھ ہم نے روایتیں جمع کی تھیں کہ آئمہ نے جو جن کو موقع ملا انہوں نے کس طرح سے عزاداری انجام دی, اس کو ہم پھر انشاءاللہ کبھی بیان کر دیں گے چونکہ وقت پھر ہمارا. جی کتابوں کا ایڈریس آپ مختلف ہیں, وہ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں, بہار ہے مختلف کتابیں جو آئمہ نے مختصر جو ہے وہ جس طرح سے عزاداری کی. اگر آخر میں ٹائم ملا, چونکہ اہم موضوع ہمارا نکل جائے گا, وہ ہمیں اعمال بتانے ہیں اور آداب, وہ اس کو ہم پہلے بیان کر دیتے ہیں, اگر ٹائم بچا تو پھر ہم اس کو بیان کر دیں گے دوبارہ. جس طرح سے ہم نے پہلے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ محرم الحرام ایک احترام والا حرمت والا مہینہ ہے, تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ اعمال ذکر کیے گئے ہیں. سب سے بڑا عمل جو اس مہینے میں وہ سب کو معلوم ہے اور وہ ہے عزاداری. یہ خود ایک عبادت ہے, اور حتیٰ اس مہینے میں اگر کوئی شخص سیاہ لباس کالا لباس پہنتا ہے تو مراجع کرام کے نزدیک اس کا استحباب, باس کے نزدیک استحباب ثابت ہے, مستحب ہے, اور بلکہ جو مجتہدین استحباب کے قائل نہیں ہیں حد عقل راجح ضرور کہتے ہیں کہ دین کو مطلوب, اللہ کو مطلوب عمل راجح کہتے ہیں, ایک ایسا مطلوب عمل کہ جس کو پسند کی نگاہ سے دیکھا گیا اس کو کہتے ہیں راجح. چونکہ منت میں بھی ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ منت اس چیز کی اس عمل کی مانی جاتی ہے کہ جو راجح عمل ہو. راجح کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں استحباب الگ, دیکھیں استحباب الگ چیز ہے, راجح ہونا الگ چیز ہے, ثواب کا ملنا الگ چیز ہے, تینوں الگ الگ چیزیں ہیں, یہ ایک ساتھ نہیں ہے. مختصر بتا دیتا ہوں, استحباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز مستحب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عمل کو اس کام کو نسبت دے رہے ہیں اللہ تعالی کی ذات سے, یہ ہے مستحب, اور اس کا ایک خاص ثواب ہے جو معین ہے اور وہ ملے گا, حتمن ملے گا. پس اگر کوئی شخص ایک مثلا ایک کی مثال میں اس طرح سے دے دوں, کوئی ایسا غسل کسی دن ایسا غسل آ جائے کہ جس کی بڑی تاکید آئی ہو, مستحب نہ ہو, اور اگر وہ شخص مستحب کی نیت سے وہ غسل کرے, غسل صحیح ہے, اس کا غسل ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگا. واضح ہو رہی چیز؟ مستحب سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, مستحب کیا ہے. کوئی ایسا دن کہ جس دن مشہور ہو, تاکید ہو, کتابوں میں ہو, احادیث کی کتابوں میں, روایات کی کتابوں میں موجود ہے کہ بڑی تاکید کی گئی ہے کہ اس دن غسل کیا جائے, اس نے کیا کیا کہ ابھی اتنی تاکید تو یقینی طور پہ کیا ہوگا, مستحب ہوگا, اس نے مستحب کے نیت سے غسل کر لیا. اب غسل کا کیا ہے؟ غسل صحیح ہے, غسل ہو جائے گا لیکن اس کو گناہ ملے گا. کیوں گناہ ملے گا؟ کہ اس نے نسبت دی ہے اللہ سے, اللہ نے تو نہیں کہا تھا بھائی, مختلف روایات میں آیا, احادیث میں آیا غسل کر لو, اس نے غسل کر لیا, اللہ نے نہیں کہا تھا یہ کام کرنے کو. بس کوئی بھی ایسا کام کہ جس کو مستحب قرار نہ دیا گیا ہو, اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جس کی تقلید میں ہے اس کے لحاظ سے مرجے کا سب سے پہلے معلوم کر لے آیا یہ غسل کرنا یا اس کام کو انجام دینا مستحب بھی ہے یا صرف تاکید ہے. اگر مستحب ہے تو مستحب کی نیت کی جا سکتی ہے, اور اگر مستحب نہیں ہے تو مستحب کی نیت نہیں کی جا سکتی. اور اگر کسی نے مستحب کی نیت کی کہ جو کہ نہیں تھا, تو پھر وہ اس کو غلط نسبت دینے کا گناہ ملے گا, عمل صحیح ہو جائے گا. صحیح یعنی مستحب وہ ہے کہ جس کی نسبت ہم پروردگار سے شارع سے دیتے ہیں اور اس کی طرف سے حکم ہوتا ہے, اس کا ثواب معین ہوتا ہے, جو خاص ثواب ہے اس کا وہ ہمیں ملے گا, یہ مستحب ہے. ایک ہوتا راج, ایک ہوتا ثواب, عام ثواب. مثلا کھانے سے پہلے نمک کا چکھنا ہو سکتا ہے مستحب نہ ہو, تاکید ہو, ثواب ملے گا, ثواب ملے گا, مستحب نہیں, مستحب کا ثواب بنے گا. دعائے کمیل کا پڑھنا, دعائے کمیل کا پڑھنا فقط سال میں ایک رات مستحب ہے, وہ ہے 15 شعبان کی شب. صحیح, 15 شعبان کی شب میں اگر کوئی دعائے کمیل پڑھ رہا ہے اور مستحب کی نیت سے پڑھ رہا ہے, اس کو استحباب کا ثواب ملے گا. لیکن عام شب جمعہ کے اندر اگر کوئی دعا کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو دعا کا ثواب ملے گا, استحباب کا ثواب نہیں ملے گا. استحباب ایک دن ہے. اس طرح سے دوسری مثالیں. اب آ جاتی ہے راجے. راجے یعنی دین, یعنی پروردگار شارع کو مطلوب عمل جس کو پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے, وہ اس نے آپ کے لیے ضروری قرار نہیں دیا, نہ اس کے لیے کوئی ثواب معین کیا. ثواب ضرور ملے گا, معین نہیں کیا, نہ اس نے کوئی حکم دیا ہے. ہاں پسند ضرور کرتا ہے کہ اس عمل کو انجام دو, کالے لباس کا پہننا, سیاہ لباس کا پہننا, اہل بیت کے غم میں یہ ایک باس مراجے کے نزدیک, بلکہ اکثریت کے نزدیک مستحب عمل ہے, اور جن کے نزدیک استحباب قرار نہیں ہے لیکن راجح ضرور ہے, سب کے نزدیک راجح. بس اسی لیے حتیٰ نماز کے لیے جو حکم ہے کہ مثلا آپ سفید لباس میں پہنے زیادہ ثواب ہے کہ سیاہ لباس میں نہ پہنے, حتیٰ اگر عزاداری کے لیے کوئی شخص سیاہ لباس پہنتا ہے, اس عزاداری کے لباس سے سیاہ کے اندر اگر نماز پڑھتا ہے, نہ فقط یہ کہ مکروہ عمل نہیں ہے بلکہ اس کو ثواب بھی اضافی ملے گا. اسی طرح سے نماز میں غیر خدا کے لیے اگر کوئی شخص گریہ کرتا ہے اور بلند آواز میں اگر گریہ کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے, نماز باطل ہے. غیر خدا کے لیے نماز میں آپ نے گریہ کیوں کیا؟ مگر حسین نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, خدا ہے حسین, خدا ہے نعوذ باللہ کا نہیں. سب کے لیے اگر کسی کے لیے بھی تم نے غیر خدا کے لیے گریہ کیا تو تمہاری نماز باطل. حسین کے غم میں اگر نماز میں گریہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اور ثواب دو, اور ثواب دو, اور ثواب دو. یہ ہے حسین کی عظمت. ایسے ہی تو نہیں رسول سجدے میں پڑے رہے, حسین کندھے پہ بیٹھ گئے, جب تک دل چاہا بیٹھے رہے, کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جب تک خود نہیں اٹھ گئے, خود نہیں اٹھ گئے. یہ حسین کی منزلت. تو کہا کہ دیکھو غیر خدا کے لیے نماز میں رو گے, نماز تمہاری قبول نہیں ہے, ختم, باطل, بیکار. کہا حسین کے غم میں رو گے تمہیں ثواب بھی ملے گا, بالکل جائز, بلکہ ثواب. کتنی عظمت ہے حسین کی. تو یہ محرم میں سیاہ لباس حسین کے لیے کریا. ہر وقت روزانہ مجلس کریں, روزانہ اپنے گھر میں مجلس کریں. ابھی گھروں کی کتنی تاکید ہے روایت میں, گھروں میں. بھائی قبلہ آپ گھروں میں مجلسوں کا کہنا ہے, اتنا مشکل کام کیسے انتظام کریں گے؟ ابھی جو آپ کے ذہنوں میں تصورات ہیں نا ایک مجلس کے, اس کو ختم کر دیجیے. جو آپ نے اپنے تصورات ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ مجلس ہو ہی نہیں سکتی جب تک میں لوگوں کو نہ بلاؤں, جب تک میں فرش اعضا لازم بچھائیں, اپنے گھر میں بچھائیں, اپنے گھر والوں کو بٹھائیں, اپنے بچوں کو بٹھائیں. دو بچے, دو بچوں کو سامنے ایک مرتبہ ایک روایت ذکر مصائب حسین بیان کرنے مجلس سے, ये मजलिस है। रोजाना कितने ही उनमा गुजरे ऐसे कि जो पूरे साल कभी ऐसा ना नहीं हुआ कि जो उन्होंने अपने घर में मजलिस मुनक़िद ना की हो। कभी कैसे करते थे मजलिस? कर कुछ नहीं, अपने ही घर वालों को बिठाया और दो जुमले मसाइब के पढ़े, एक मरतबा सलाम अलैक या अबा अब्दुल्ला कहा और मजलिस हो गई ख़त्म। क्या ये छोटा सा अमल हम नहीं अंजाम दे सकते अपने ही घरों में? क्यों हम अपने हाथों से इस सवाब को जाने दें? हरिया में ऐसा नज़दीक है, कुछ दिन रह रहे हैं, इसको बिठा लें अपने जहनों में। रोजाना हम अपने घर में मजलिस करेंगे, हुसैन पर ग्रिया करेंगे और फिर जो उसकी रहमतें बरकतें उन रवायतों को मैंने पिछले दर्स में बयान किया कितनी रहमतें। इसीलिए इस मुहर्रम के हवाले से कुछ आमाल जिक्र किए गए हैं, उन आमाल को आज बयान करना है। शब अव्वल में मुहर्रम की कुछ शब अव्वल, शब अव्वल यानी शब अव्वल मुहर्रम चांद रात, अच्छा कुछ दुआओं का जिक्र है, कुछ नमाजों का जिक्र है। शबेदारी बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत ज्यादा अहमियत है शबेदारी करना और कुरान की कसरत के साथ तिलावत करना, ये बयान किया गया है। और ये दुआएं जो हैं मफाती में जिक्र हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, इसलिए जो है वो आप मफाती से देख सकती हैं। पहली मुहर्रम को रोज़ा रखना, क्योंकि रवायत है कि पांचवें इमाम से किसी ने पूछा कि मौला पहली मुहर्रम को रोज़ा रखने का क्या सवाब है या क्या उसकी अहमियत है? कहा इसलिए इसको रोज़े को करार दिया गया है कि जनाब ज़िक्रिया ने आज पहली मुहर्रम को दुआ मांगी थी, अल्लाह ने इस दुआ को मुस्तजाब किया था और इसके कबूल किया था, इसलिए कहा है कि रोज़ा रखो और रोज़ा रखने के बाद पहली मुहर्रम के हवाले से दुआ मांगो, इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल होगी। और ये रवायत वसाइल शिया की सातवीं जिल्द में और पहली हदीस है, वहाँ मौजूद है। इसी तरह से तीसरी मुहर्रम को रोज़ा तमाम मराजी के नज़दीक तकरीबन मुस्तहब हैं और बाज़ जो रवायात आई हैं उसमें जो है वो हज़रत यूसुफ़ के हवाले से है कि तीसरी मुहर्रम को हज़रत यूसुफ़ जो है वो बाज़ रवायात में कुएं से बाहर आए थे और बाज़ रवायात में है कि जिंदानी जो किया गया था उनको आज़ादी मिली थी उस दिन। दुआ कबूल की हदीस मौजूद है रिसालत माफ से कि इस दिन दुआ कबूल होती है, रोज़ा रख कर दुआ मांगो तीसरे दिन। और इसी तरह से सातवीं मुहर्रम को रोज़ा रखना, ये इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है और बहुत मुस्तहब करार दिया गया है। शबे आशूर के हवाले से बे इंतहा नमाजों का जिक्र, दुआओं का जिक्र है, हत्ता 100 रकत नमाज का जिक्र है कि जिसमें हर 2 रकत के बाद जो है वो सलाम है और बाद हम तो 3 मरतबा सूरह कुल है। अलबत्ता कि शबे आशूर में अगर कोई पूरी रात जागता है, पूरी रात जागने का बहुत सवाब है शबे आशूर में, बे इंतहा सवाब है। और अगर कोई आज़ादारी करता है, गिरिया उजारी करता है, मातमदारी करता है, इसका भी बे इंतहा सवाब है, बे इंतहा ताकीदात आई है इसकी। पूरी रात जागना गम हुसैन में, मजाक नहीं करना, हंसना नहीं है, यानी खुदा ना खासा कोई ऐसा अमल कि जिससे शब आशूर की हुरमत पायमाल हो, ऐसा कोई अमल आपको अंजाम नहीं देना। बहुत सख्त इसकी मजम्मत आई है क्योंकि बिलाखिर शब शहादत है। यानी किस तरह से हमारे माशरे के अंदर राइज था और इसी को आहिया करना है, जिंदा करना है कि किस तरह से शब आशूर मनाई जाती थी, बिल्कुल इसी तरह से शब आशूर मनाना है कि जैसे किसी के घर में अगर मौत हो जाए तो क्या मजाक करता है कोई? हमारे मौला आका पूरा खानदान हज़रत ज़हरा का उस रात में उसमें शहीद हो गया, घर उजड़ गया उनका, मगर कोई हो सकता है जो मजाक करे, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए? शब आशूर में अज़ादारी करना, गिरिया उजारी करना, मातम करना ताकीद है उसकी। इसी तरह से बहुत सारी 70 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है। 70 मरतबा आपको पढ़ना है, 4 रकत नमाज पढ़ना है शब आशूर में, कि जिसमें सूरह हम के बाद 50 मरतबा सूरह तौहीद है, और इसको नमाज हजरत अमीरुल मोमिनीन भी कहा गया है। आशूर के हवाले से यकीन तौर पर मोमिनीन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस दिन क्या अमल करना है। अमल आशूर में रोज़ा मैंने पहले बताया आपको कि शदीद मकरूह है, बल्कि रोज़े की जगह फाका करना है। फाका यानी एक ऐसी हालत कि जिसमें रोज़ा ना हो और आपको खाने पीने से परहेज़ करना है, फाका करना है, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना है, अज़ादारी कसरत के साथ अंजाम देनी है, और अगर ज़ायरीन या जुलूस वगैरह में अगर कोई पानी पिलाना, शरबत पिलाना, न्यास तकसीम करना, बेइंतहा सवाब है। रवायात मौजूद है, मैं रवायत नहीं पढ़ रहा वक्त की कमी की वजह से। न्यास का तकसीम करना, पानी पिलाना, हमारे मोमिन को पानी पिलाओ, हम ये तुम्हें अता करेंगे, जिसने ये कि हम पर एहसान किया, हम उसका एहसान का बदला क़यामत के दिन देंगे। फाके से मतलब ये कि बाद उसके बाद हज़ादारी नहीं, फाका में तो नहीं, नहीं फाके में तो बेहतर ये कि ना फाका करना जो अगर कोई बाद फाके के बाद फाका होता है दर हकीकत असर तक। अरे लोगों का एक अमूमन सवाल ये होता है कि भाई असर तो असर के वक्त तो असल इमाम हुसैन की शहादत है, वो कहते हैं आप फाका शिकनी कर लीजिए। नहीं, देखें फाका शिकनी का असर के वक्त इसलिए है कि जिस वक्त इमाम हुसैन की शहादत हो गई, नहीं कहते मैं देख रहा हूँ कि मेरे जद रसूल खुदा, मेरे बाबा अली और फातिमा आबे कौसर लिए खड़े हुए हैं, मुझे बुला रहे हैं, हुसैन आ जा मेरे पास, मैं आबे कौसर से तुमको सैराब करूँ। फाका शिकनी ये है, जैसे ही असर के वक्त इमाम हुसैन शहीद हुए हैं और इनकी रूह उनसे मुंसलिक हुई है, वहाँ पर उन्होंने आबे कौसर पिया है, इसलिए कहते हैं फाका शिकनी, असर के वक्त फाका शिकनी करें, क्योंकि मौला सैराब हो गए। एक हज़ार मरतबा अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व असहाबिही। और फाका शिकनी के लिए जो हमारे पास 1000 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत आशूर के दिन, 1000 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत, और इसी तरह से फाका शिकनी के लिए जो है वो जो हमारे पास ताकीद आई है वो आई है कि अगर कोई शख्स फाका शिकनी करे तो बेहतर ये है कि तुर्बत इमाम हुसैन से फाका शिकनी करे, थोड़ी सी तुर्बत, तुर्बत खाके शिफा, थोड़ी सी खाके शिफा लेकर पहले रखे जबान पर, उसके बाद फिर कोई चीज़ खाए, यानी फाका शिकनी भी तुर्बत हुसैन है। और जब कोई मोमिन पहली मुहर्रम से, ये अमल है पहली मुहर्रम से लेकर और आपके आशूर तक, शब आशूर तक, शाम गरीबा तक, जब भी कोई मोमिन मिले आपस में, तो वो एक दूसरे को हुसैन की शहादत का पुरसा दे। पहली मुहर्रम से शब आशूर तक मुलाकात करते हुए क्या कहना है? आज़म अल्लाहु उजूरना व अजूरकुम बे मसाइबेनाल हुसैन अलैहिस्सलाम, आज़म अल्लाहु उजूरना व अजूरकुम बे मुसीबत या मसाइबेना हुसैन अलैहिस्सलाम, ये पढ़ना है आपको, यानी एक दूसरे को जिक्र करना है। जब भी इसको बहुत छोटी सी इबारत, इसको याद कर लें, चूँकि ये अमूमन हमारे यहाँ तो याद है सबको, कि जब भी किसी से मोमिन से मुलाकात हो मुहर्रम के अय्याम में, खुसूसन 10 अय्याम, इस दिन सलाम करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये पढ़ें सबसे ज़्यादा ताकीद इसकी है, आज़म अल्लाह आज़म अल्लाह आज़म अल्लाह उजूरना आज़म अल्लाह उजूरना व उजूरकुम बेमसाइबेनल हुसैन अलैहिस्सलाम। मफाती में भी मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मौजूद है, बड़े बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा सवाब इसका, बहुत ज़्यादा सवाब है। लेकिन लेकिन आशूर, शब आशूर और आशूर का दिन, उस दिन भी ये पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, उस दिन भी ये पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और रवायात में, अहादीस में ताकीद की है। वो क्या ताकीद है? वो ताकीद ये की गई है रवायात में, अहादीस में, कि शाम शब आशूर से लेकर शाम गरीबा तक ये खास अमल है कि जब दो मोमिन आपस में मिलें तो गले मिलें, गले मिलकर गिरिया करें और एक दूसरे को हुसैन की मुसीबत का पुरसा देना, बहुत ज़्यादा ताकीद। यानी ऐसा अंदाज अपनाना है कि जैसे आज हमारा बाप मर गया है, बिलाखिर हुसैन 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 कहते हैं ना कि क्या है वो शेर के, हुसैनी इस्लाम जिंदा होता है, नहीं पहला शेर पढ़ें, मर गए यजीद, सुनें, मर गए यजीद असल में कत्ले हुसैन, कत्ले हुसैन असल में, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है बस करबला के बाद। हर करबला में शेर में थोड़ी सी तब्दीली की है, मैंने बता रहा हूँ अभी अभी तब वहाँ है लफ्ज़, हर करबला के बाद कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है बस करबला के बाद। नहीं, हर नहीं सर, हमारे अकीदे के लिहाज से हर का लफ्ज सही नहीं है। हमारे अकीदे के लिहाज से जो मैंने शेर में थोड़ी सी तहरीफ की है वो सही है, इस्लाम जिंदा होता है बस करबला के बाद।
तो लोग कहते हैं कि सलाम ना करना,
देखें सलाम करना वाजिब तो है नहीं, वाजिब है मगर जवाब देना वाजिब है। अगर किसी ने सलाम किया है, जवाब देना चूंकि वाजिब है, वो तो देना होगा आपको, चूंकि वाजिब को तर्क नहीं कर सकते आप, लेकिन सलाम करना तो वाजिब नहीं है आपके लिए। तो सबसे बेहतर क्या है, अगर सलाम करें भी तो वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ आज़म अल्लाह जुगुराना वजूरा को, ऐसा मुसीबत का दिन है कि जिसमें फ़कत और फ़कत आपको ये तसलियत देनी है। लेकिन मजलिस में शिरकत के लिए कुछ आदाब का जिक्र किया गया है, मैं तेज़ी के साथ पढ़ देता हूँ चूँकि आप लोगों का भी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। एक, इंसान के पास मजलिस में जाने के बाद, मजलिस में जाने का सवाब आपको अगर किसी को अंदाजा हो जाए, मजलिस में जाने के लिए सबसे पहले रूही और मानवी आमादगी, तसव्वुर करें हुसैन को, तसव्वुर करें हजरत जहरा को, तसव्वुर करें रसूल खुदा को, तसव्वुर करें मौला अली का, कि किस तरह से हुसैन की शहादत पे ये आइमा गिरिया कुनाए, किस तरह से हुसैन की मुसीबतों पे आंसू गमजदा हैं, इसके तसव्वुर के साथ अब मजलिस में शिरकत करें, इस तसव्वुर के साथ कि बस मैं मजलिस में जा रही हूँ, पुरसा है देना है हजरत जहरा को, उनके बेटे हुसैन का, इस तसव्वुर के साथ। ना ये कि भाई वो 4 बजे वो फना किया मजलिस है, बस शक्ल दिखा के आ जाएंगे, नहीं शक्ल नहीं दिखानी, शक्ल दिखानी छोड़ें, इसको मजलिस में ना जाना बेहतर। या फला फला के जाना भी, 5 मिनट उनकिया बैठेंगे, 5 मिनट उनकिया बैठेंगे उसके बाद चले आएंगे, नहीं ना जाएं बेहतर है, 5 मिनट ना आप 10 मिनट भी बैठें बेकार है आपको बैठना, नहीं बेकार से मतलब सवाब तो फिर भी मिलेगा, लेकिन वो अजर और सवाब भी मिलेगा जो इस मानवी और रूही आमादगी का मिलेगा। रूही और मानवीय कैसे लाएंगे, तसव्वुरात से लाएंगे कि मेरा जाना कदम रखना उस फर्श अज़ा में बैठना कितना सवाब है। नियत खालिस, खालिस नियत के साथ मजलिस है, बस मजलिस में जाना है, बाकी किसकी तरफ से है, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, किससे बात होगी किससे बात नहीं होगी, सब सानवी चीजें, खुलूस नियत हुसैन की मजलिस में जाना है। मैंने बताया आयतुल्लाह आरा की, मरहूम आयतुल्लाह आरा की, जब निकलते थे पैदल नंगे पैर होते थे आशूर के दिन, और जहाँ तबर्रुक कहीं बट रहा है या शरबत की सबील लगी है, इतना ही से पानी, कबला इतना इतनी प्यास आपको, कहा नहीं मैं प्यास की वजह से नहीं पीता, फिर किस वजह से पीते हैं, कहने इसलिए पीता हूँ कि नहीं पता, नहीं पता कि अल्लाह ने किसकी सबील को कबूल कर लिया और इसमें शिफात रख दी, उस शिफा को हासिल करने के लिए पीता हूँ। तो तबर्रुक की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बावजू हद तल इम्कान कोशिश करें कि बावजू मजालिस में शिरकत करें। इसी तरह से मजलिस से अज़ा की मुनासबत से लिबास ज़ेब तन करें, और मजलिस में शिरकत के सवाब में इमाम ज़माना को और अपने मरहूमीन को हरगिज़ फरामोश ना करें, यानी मामूली ना समझें कि मजलिस में शिरकत का सवाब कोई मामूली चीज़ है, इसमें शरीक कर लें अपने सवाब के अंदर, ये आज मैंने मजलिस में जो शिरकत की है इसके सवाब में मेरे मरहूमीन भी शामिल और मेरे मौला आका इमाम ज़माना भी शामिल। अगर कोई शख्स ये काम कर सकता है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, जैसे आया मराशी नजफी का मैंने वाकया बयान किया कि एक रुमाल, एक ख़ास रुमाल हमेशा के लिए बना लें, दो बना लें, एक बना लें दो बना लें, जिसमें अपने आंसुओं को जमा करें, ये आंसू आपकी शिफात करेंगे क़यामत के दिन, ये आंसू आपकी शिफात करेंगे। रुमाल, एक ख़ास रुमाल मुँह पे मल लें, बहुत अच्छी बात, मैं कहा शिफा के लिए उलमा को देखा मैंने कि इन आंसुओं को मलते हैं, इन आंसुओं को नहीं मलते, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, इन आंसुओं को, आप आंसुओं की बात कर रही हैं, आयतुल्ला उज़्मा बुरो जर्दी, कुम के बहुत बड़े मर्द, यानी आलम इस्लाम के बहुत बड़े मर्जे कुम में दफन है, आए मरशी आए बुरोजर्दी जिस वक्त जो है वो मर्जी के सतह पर आने वाले थे, यानी इश्तहात की मंजिल तय करने वाले थे, उस वक्त उनकी आंखों की बिनाई कम होने लगी, जब ये डॉक्टरों के पास तबीबों के पास गए तो उन्होंने कहा ये कुछ अरसे की बिनाई है जो बाकी बची है आपकी, ये इसके बाद ख़त्म हो जाएगी, इन्होंने गिरिया शुरू किया, गिरिया शुरू, क्या गिरिया क्या कि मैं तो मर्जे बनने आया था, मैं तो मुश्तहिद बनने आया था कि परवरदिगार कि ये क्या हो गया कि अभी उस इश्तहात की पहली मंजिल पर नहीं पहुँचे मेरी आँखें चली गई और कुछ अरसे बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। गिरिया करते करते सो गए, रात में ख्वाब में इमाम हुसैन को देखा, क्या शिफा चाहते हो, कह शिफा चाह रहे हैं, क्या क्या करो, कहा शिफा हासिल करना चाहते हो, तो ये तो हमसे क्यों फरियाद कर रहे हो, हमसे क्यों फरियाद कर रहे हो, ये तो हमने अपने अज़ादारों को दी हुई है शिफा, कहा क्या करूँ, कहा कि जिस वक्त मेरे हुसैन के गम में सीना जनी मातम करते हुए अज़ादार जाए तो उनके पैरों के नीचे की जो खाक है उसको उठा के लगाओ। ये आगे बुरुजर्दी का मशहूर तरीन बात है कि इन्होंने अपनी आंखें बचाई ही आज़ादारों के खाक से, उस खाक को अपनी आंखों पे लगाया, उसके बाद उनकी रोशनाई ना फकत वापस आ गई, ना फकत वापस आ गई, बल्कि इस तरह से आई कि आखिरी उम्र तक उन्होंने चश्मे ही नहीं लगाया। ये अल्लाह ने शिफात रखी है, आज़ादारों की अहमियत कम नहीं है। मैं बहुत خاکی کربلا کی تسبیح کا ہاتھ میں رکھنا، ویسے عام دنوں میں بہت زیادہ ثواب ہے، ان دنوں میں خاص طور پر اپنے ہر پرس میں، ویسے بھی خواتین کے پرسوں میں ہر چیز ہوتی ہے، لیکن تسبیح تو کم از کم رکھ لیں اس دن، خاک شفا کی تسبیح، تسبیح عام کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں خاک شفا کی تسبیح، صرف نہ پڑھیں، ہاتھ میں رکھیں، اس کا بے انتہا ثواب. کیوں؟ کہا دو ثواب ملیں گے. کیا ثواب ملیں گے؟ کہا یہ خاک شفا کی تسبیح خود ذکر کرتی ہے، کہ تم نہ بھی کرو تو تمہیں اس کے ذکر پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر تم نے پڑھنا شروع کی تو دو ثواب، اس کے ذکر کا بھی، تمہارے پڑھنے کا بھی ثواب. تو اس خاک شفا کی تسبیح کم از کم ایام اعظم حتمن ساتھ رکھیں اپنے. لوگوں کو مجلس میں شرکت کی اپنی طرف سے دعوت دیں، تشویق کریں، کہیں چلو آج مجلس میں چلتے ہیں، ایک شخص کو لے جاؤ، دو آنسو بہا لے، اس کا سارا ثواب میں شریک آپ. تشویق کرنا. حدیث کو ایک عمل کے طور پر یہاں بیان کروں، حدیث اس کے پیچھے در حقیقت مجلس عظم شرکت کے لیے ہر قدم کا 1000 ثواب. کتنے ثواب اللہ دے رہا ہے. پھر ایک اور چیز، کہ بچوں کو حتمن جو ہے وہ یہ نہ کریں کہ بچے ہیں شیطانی کرتا ہے مجلس میں نہیں لے کے جائیں گے یا مجلس میں نہیں بھیجیں گے، یاد کیسے کرے گا وہ، اس کو حتمن لے کے جانا ہے. ہاں اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہے. موبائل کا استعمال کم سے کم کریں خدا کے لیے مجلسوں میں، اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں، باتیں کرنے سے پرہیز کریں، اور تبرک کو مومن کے احترام، تبرک کو دیں، مومن کو احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے، مومن کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے دینا ہے. ایسا نہیں ہے تبرک کے دل میں کچھ اور دل دھڑک کر رہا ہے اس کے بعد تبرک دے رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، خلوص کے ساتھ تبرک دیں، اور تبرک کھانے والے اس تبرک کے احترام، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، شفا ہے اس میں شفا رکھی ہو. تبرک کا احترام کریں، جتنا مل جائے شکر کریں، اور جو نہ ملے اس کے اوپر بھی شکر کریں. تبرک میں جو تاکیدات علماء نے بیان کی ہیں، اس میں تبرک بانٹنے کی ابتدا جو ہے وہ بچوں سے کریں، چونکہ بچے سب سے اہم، ان کی تربیت کرنا ہے. ساتھ میں بیٹھے ہوئے افراد کا تبرک میں خیال رکھیں. مجلس کے بعد ہنسی مذاق سے پرہیز کریں، ایسا نہ ہو کہ مجلس کے بعد ہنسی مذاق سے پرہیز کریں، واپس جاتے ہوئے یاد رہے کہ آپ مجلس عزا سے واپس جا رہے ہیں، اور جو بھی انتظامیہ مجلس کے اس سے تعاون کرے، مجلس میں کمی بیشی کا جو بھی مسئلہ ہو، جو مسائل ہوں، مشکلات ہوں، اس کا تذکر صرف اور صرف صاحب عزا سے کریں، سب دوسروں سے نہیں ڈسکس کریں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا اور ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہوتا بہت اچھا ہوتا. جیسا بھی ہوتا، جو بھی آپ کو اعتراضات ہیں، وہ صاحب عزا کو، وہ بھی آہستہ سے، اس کی عزت و احترام کا خیال رکھنا ہے آپ کو. اور آثار برکات عزاداری جو ہے وہ اگر آپ کہیں تو بیان کر دوں، ورنہ پھر گناہوں کی وین نکل جائے گی آپ لوگوں کی. خیر چلے، گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہے، ثواب بے انتہا، تثبیت ایمان، ایمان کی استحکام کا باعث ہے، حسن عاقبت کا باعث ہے، تبلیغ دین کا باعث ہے، پیوند با آئمہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئمہ سے کیسے منسلک ہوں، کیسے متوسل ہوں، یہ مجالس سب سے بہترین ذریعہ ہیں. عامل بقاء اسلام، استجابت دعا کا ذریعہ مجالس ہیں. تربیت گاہیں، چاہے بڑا ہو بچہ ہو، امیر ہو جاہل ہو عالم ہو، سب کی تربیت گاہ یہی مجلس ہیں. مجلس سے کرنا اجر رسالت کا باعث ہے. عزاداری شفاعت ہے، عزاداری خود شفا ہے، نجات. سکرات کے موت کے سکرات سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ عزاداری میں کرے اور عزاداری میں شرکت کرے. اچھا یہ ساری چیزیں احادیث بھی ہیں کہ ہمارے جد آئیں گے اور سب اس کے پیچھے ہیں. خیر، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے شارٹ کر دیں وقت کی بنا پر. انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم جس طرح سے ان کی خواہش آئمہ کی کہ ہم آزاداری کو برپا کریں، اسی طرح سے انشاءاللہ توفیق دیں کہ ہم اس آزاداری کو برپا کریں انشاءاللہ، اور ہماری آزاداری کو، ہمارے مرثیوں کو، ہمارے گریے و ماتم کو اللہ تعالیٰ قبول کریں. اور آخر میں فقط ایک درخواست کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آزاداری وہ مقام ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں مجالس، صحیح. اس لیے آپ نے خصوصی کو درخواست کہ اس بندے حقیر، اس بندے ناچیز کو جب کبھی اگر یاد آ جائے کسی موقع پر تو ایک مرتبہ دعا ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کہ اس عزاداری کے صدقے میں کہ جو آپ کی اپنی دعائیں ہیں وہ بھی پوری کرے اور جو ہماری دعائیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے انشاءاللہ.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله.